पहला ग्रुप है एशिया, इसमें भारतवासी तथा मधुबन निवासी भी हाथ उठाओ। मधुबन वासी तो विशेष है, ये बड़ा ग्रुप है, भारत वाले भी चांस लेने में होशियार है। तो एशिया निवासियों के प्रति विशेष आज के दिन तीन वरदान तो सभी के है ही, लेकिन विशेष एशिया प्रति कौन से तीन वरदान? संबंध, संपत्ति और सेहत, तंदुरुस्ती। तो एशिया निवासियों के प्रति विशेष आज के दिन तीन वरदान तो सभी के है ही, लेकिन विशेष एशिया प्रति सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव भव। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव, ये विशेष वरदान एशिया निवासियों के प्रति है। सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव। श्रेष्ठ भाव अर्थात गुड विशेष से बहुत बड़ा, गुड विशेष तो फिर भी छोटा है, श्रेष्ठ एलिवेटेड बहुत ऊंची भावना है। गुड विशेष तो संसार की आत्माएं भी रखती है। श्रेष्ठ भाव अर्थात ऊंचे विचार, श्रेष्ठ भाव अर्थात ऊंची भावनाएं, श्रेष्ठ विचार अर्थात, श्रेष्ठ भाव अर्थात निस्वार्थ भाव, अति उत्तम विचार, निस्वार्थ निष्काम स्वार्थ रहित भाव, कल्याण का भाव, प्योर फीलिंग्स और शुभ भावना। भावना भी शुभ और श्रेष्ठ, भाव भी श्रेष्ठ। ये वरदान बाबा इनको दे रहे हैं कि विशेष एशिया प्रति सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव भव। पहले भावना, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव। भाव और भावना में क्या अंतर है? और भाव,
भाव पहले होता है, भावना पहले बाद में। भाव
एटीट्यूड। बाबा तो दोनों को समानार्थी रूप से प्रयोग में करते हैं, लाते हैं हमेशा। कोई विशेष अंतर तो नहीं है, लगभग सेम ही है। भाव भावना पर बाबा दोनों को एक रीति से ही यूज करते हैं। श्रेष्ठ भाव कभी कहेगा श्रेष्ठ भावना, कभी कहेगा शुभ भाव होना चाहिए सबके प्रति। भाव मतलब वो भाव करना, वो अलग भाव। भाव मतलब हाँ वो तो है, वो दूसरा अर्थ है भाव का। भाव के दो अर्थ है फिर, एक अर्थ भावना, दूसरा अर्थ रेट। पर भावना का एक ही अर्थ है, जैसे वो निर्माण और निर्माण, बड़ा निर्माण है उसका एक ही अर्थ है कंस्ट्रक्शन, छोटा निर्माण जो है ना उसके दो अर्थ है, निर्माण अर्थात नम्रता और दूसरा निर्माण अर्थात निर्माण। छोटे न के दो अर्थ है, बड़े न का एक ही अर्थ है कंस्ट्रक्शन। वैसे ही भावना अर्थात भाव, भावना अर्थात भाव और भावना लगभग सेम है, खाली शब्दों का खेल है। तो सदा शुभ भावना कैसे रखे वो, जो हमारी स्तुति कर रहा है, जिसकी हमारे प्रति शुभ भावना है, या जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, उसके प्रति शुभ भावना रखना तो बहुत आसान है। किसके प्रति कठिन है शुभ भावनाएं रखना? जो विरोधी है उनके प्रति शुभ भावना रखना, और अपकारी जो है उनके प्रति शुभ भावना रखना थोड़ा मुश्किल है, और विघ्न है, बार बार विघ्न डालता है, और कंप्लेन करने वाले, उसमें भी झूठी झूठी कंप्लेन करने वाले। और ईर्ष्या करने वाले और जिन्होंने बहुत दुख दिया है हमको जीवन में, बहुत जिन्होंने दुख दिया है और विघ्न रूप और टांगड़ा ना एक ही चीज है वो दिखाते हैं ना, इसमें बड़ी शुभ भावनाएं चाहिए दिखाते हो। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु जो हुई थी, उनका जो कुक था बावर्ची, उसने खाने में जहर मिलाया था धीरे धीरे, और फिर पर उनको एक बार पता चल गया तो उन्होंने क्या किया उसके साथ। हाँ, रातों रात उसको कहा तू अभी से अभी चले जाकर मेरे अनुयायियों को पकड़, पता चल गया तो तुमको मार देंगे। क्षमा कर दिया और उसको कहा तू चले जा कहीं दूर, कहां से था वो, चाइना से, वहां चला जा वापस। ये था शुभ भावना, वहां तो मार्जिन है थोड़ी सी भावना है अशुभ होने की, माफ कर दिया, बहुत बड़ा काम है। हाँ, वो तो मर गया, इसने शरीर छोड़ दिया, पर उसको ये पता चल गया था कि इसने ही वो किया, और उसने स्वीकार भी किया हाँ मैंने किया, पर उन्होंने कहा कि तू यहां से रातों रात चले जा, अगर किसी को भी पता चल गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। तो ये जो शुभ भावना के लिए माफी, माफ करना बहुत जरूरी है, माफी मांगने की बात नहीं चल रही है, माफ करना हमारे लिए, अपनी शांति के लिए, अपने पर रहम करने के लिए। बाबा कहते हैं पहले आप ही अपने पर रहम, ये अपने पर रहम है, हम उसके लिए उसको माफ नहीं कर रहे, अपने लिए माफ कर रहे, क्योंकि अगर हमने माफ नहीं किया तो हमारी भावना कभी भी शुभ नहीं रहेगी उसके प्रति, कभी भी शुभ नहीं रहेगी। एक दूसरा एक उदाहरण है ऐसे ही, मतलब माफ तो कर दिया परंतु वो किया कि नहीं आप वो सुन के बताओ। एक दिखाते एक पति है और पत्नी, एक बार किसी फंक्शन में गए तो पति ने इतनी शराब पी ली वहां पर, कभी पीता नहीं है वो, अच्छा ही है, दोनों का भी अच्छा चल रहा है, पर वो सब पीने के बाद उसने वो जो पार्टी महफिल में जोर जोर से चिल्लाना चालू किया, पटकना चालू किया, ये करना चालू किया, बहुत सारा ऐसा कुछ हंगामा किया। तो दोनों जब घर आते हैं तो पति को फिर जब उसका पता चलता है ये मैंने क्या कर दिया, तो उसको बहुत फील होता है वो बात, ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यूजुअली वो ऐसा नहीं करता है, पर उसकी पत्नी उसको कहती है कि जो भी हुआ चलो मैं आपको माफ करती हूँ और ये भूल जाती हूँ, जो भी आज हुआ उसने जो भी कुछ किया, यूजुअली तो करता नहीं है पर पहली बार उससे इस तरह की गलती हुई, वो कहती है मैं तुम्हें माफ करती हूँ और मैं भूल भी जाती हूँ। परंतु ऐसा हुआ कि कई सालों तक वो उसे रोज ये बात बताती रहती है। तो वो एक दिन इतना परेशान होता है कि मैंने तो माफी मांग ली तुमसे फिर भी तुम मुझे ये रोज रोज क्यों बताती हो। वो कहती है मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया और मैं भूल भी गई, पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम ये भूल जाओ कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उसके लिए मैं तुम्हें रोज बताती हूँ। मतलब इसको ये ना हो जाए कि तुम ये भूल जाओ कि मैंने माफ भी किया और मैं भूल भी गई, ये तुम भूलना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं तुम, बाकी तो मैंने माफ कर दिया है और मैं भूल भी गई हूँ, पर तुम ये भूलो नहीं, तो उससे भी सामने वाला परेशान हो गया। दो है ना, एक फॉरगिव करना और उसको भूल जाना। हाँ नहीं, उसने क्षमा कर दिया, वो कहती है मतलब क्षमा भी कर दिया और मैं भूल भी गई, वो खाली उसके लिए बता रही कि वो ये ना भूले कि मैंने क्षमा कर दिया। हाँ, उसको नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए तो कहा आप बताओ फिर वो भूली या नहीं भूली।
भूली होती तो याद भी नहीं कराती।
ये माफ करना इतनी आसान बात नहीं है, बहुत कठिन काम है ये माफ करना। ऊपर से कह देना कि हमने आत्मा को इमर्ज किया और माफ कर दिया, आज बाबा ने वरदान में कहा है संपर्क वाली आत्माओं के ऊपर नजर दौड़ाओ, उनको याद करो तो वो भी तुम्हें याद करेंगे। ये सुबह तो कर दिया, तो प्रैक्टिकल करना कितना मुश्किल है। संपर्क में हाँ, मतलब मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र सा स्वभाव है मनुष्य का, वो जो कहता है जरूरी नहीं है वो करेगा, संकल्प भी अच्छे है, सोचता भी है, जाता है किसी से माफी मांगने के लिए और झगड़ा करके आ जाता है, ये उसका स्वभाव है। क्या करे, श्रेष्ठ भावनाएं है कि इसको माफ करना है या माफी मांगनी है, माफी मांगने जा रहा है व्यक्ति, पर जब सामने जाता है तो सुन नहीं पाता है और झगड़ा हो जाता है। युद्ध तुम एक एक युद्ध के मैदान में इंडिपेंडेंट सिपाही हो, इंडिपेंडेंट अकेले हो इसमें, ये हमारी लड़ाई है। ठीक हो जाते फिर लड़ाई, फिर माफ, फिर श्रेष्ठ भावना है, फिर शुभ भावना है, फिर लड़ाई, फिर शुभ भावना है। कुछ और करना पड़ेगा, केवल इतने से नहीं होगा कि हमने माफ कर दिया, स्वीकार कि हम, क्योंकि माफ करना अर्थात यहाँ हमको हमारे अहंकार को झुकाना होता है, वो राजी नहीं है झुकने के लिए, वो हमको याद दिलाता है कि नहीं कैसे माफ कर दो, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा किया था, मेरे साथ ये किया था, मेरे साथ वो किया था, वो भूलता है क्या? इसकी जो मैंने एक बार कहा था ना, यूसुफ जो है पूरा इस्लाम में ये एक ऐसा फिगर है, जोसेफ जिसको कहा हुआ है सबसे श्रेष्ठ माना हुआ है, इसको कई पहले है मोहम्मद पैगंबर से, तो कई पहले इवन क्राइस्ट से भी पहले है वो, पर पैगंबरों की जो लिस्ट है पूरी, आदम, इब्राहिम, इसाक, याकूब और यूसुफ, उसके बाद में भी बहुत सारे आए, डेविड, सोलेमन, सुलेमान हिंदी में, तो उसके बाद में जीजस और उसके कई सौ साल बाद मोहम्मद पैगंबर जो कि अंतिम है, ऐसा उनका मानना। ये जो उनकी जो लिस्ट है पैगंबरों की उसमें एक यूसुफ एक ऐसा पात्र है कि उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, छोटा सा बच्चा है वो दिखाया हुआ है, उसको बेच दिया, उसके भाइयों ने बेच दिया, उसके जो 10 भाई थे, क्योंकि उसके पिताजी का प्यार सबसे ज्यादा उसके साथ था, ईर्ष्या कि हमारे पिता जो याकूब है वो हमें प्यार नहीं करता, इसे वो, और उसके जो पिताजी रहते हैं वो उससे प्यार इसके लिए करता है क्योंकि उसको साक्षात्कार हो जाता है कि यही पैगंबर है, नबूवत जिसको कहते हैं, विरासत जो है पैगंबरी की वो इसको मिलने वाली है इसके लिए, पर वो उनको बता नहीं सकता, तो वो जब देखते हैं कि इससे ही पिताजी ज्यादा प्यार करते, तो एक बार क्या करते, वो 100 के 100 भाई उसको लेके जाते हैं, बोलते हम इसको लेके जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए, और उसको मारते हैं, उसको खून करने वाले रहते हैं, पर उसमें से एक भाई थोड़ा ठीक रहता है, लाबी, वो कहता है ना एक काम करते, इसको कुएं में डाल देते, अंधेरे कुएं में उसको डाल देते और वो चले जाते ताकि उनको लगता है शायद कोई आ जाए कारवा तो इसको उठा के कहीं दूर लेके चले जाएंगे, तो उस कुएं में ही उसको सारा साक्षात्कार होता है, उस कुएं में भी फरिश्ते उसको दिखते और कहते हैं कि तेरा जो काम है तेरे पिताजी के साथ नहीं है, तेरे पिताजी तेरे दुख का, तेरी जुदाई का गम सहन करना ही पड़ेगा और तुझे भी, क्योंकि तेरा जो कार्य कहीं कुछ और कार्य है, तू अब वापस उनके पास नहीं जाएगा। उसको एक एक जैसे पता चलने लगता है क्या क्या होने वाला है उसके साथ, फिर वो कारवा आता है और देखता है ये बच्चा इसमें क्या कर रहा है, वो तो पानी के लिए, पर देखते हैं उनको पता रहता है ये जो कुआ है इसका पानी तो जैसे खारा रहता है, मीठा कैसे हो गया, उनको भी आश्चर्य लगता है। वहां से सब एक एक जैसे चमत्कार दिखाए है चालू हो गए, वो बच्चे को बाहर निकालते, फिर ये जो भाई लोग जो छुपे हुए रहते हैं वो वापस आते, कहते नहीं ये हमारा गुलाम है, हम इसको ऐसे नहीं देंगे, इसको हम बेचेंगे और इसको दूर ले जाओ, तो उसको बेचते हैं, अपने ही भाई को बेचते हैं वो, पर वो जो लड़का रहता है उसको जो फरिश्ता दिखता है वो फरिश्ता कहता है कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, और उसको दूर लेके जाते हैं, दूर लेके जाके इजिप्ट में लेके जाते हैं, मिस्र में, वहां पे वो जो आदमी रहता है जो उसको लेके जाता है, उस बीच में भी बहुत सारी चीजें होती है। अब वो लड़का इतना अच्छा रहता है, मतलब सबसे सुंदर रहता है दिखने में, और दिखाया है कि एक आदमी बहुत ही बीमार है उस कारवां में, अभी मरने ही वाला है, उसको ऐसे तख्ते पे लटका के घोड़े के पीछे लेके जाते रहते। वो कहते हैं मैं इसके साथ चलूंगा, और जाते 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 वो ठीक हो जाता है। तो लोगों को लगता है अरे ये क्या हुआ, किसने ठीक किया उसको, क्योंकि वो बच्चा वो साथ में रहता है। एक 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 जैसे अभी एक गांव से गुजरते हैं, वो जाते जाते वो कारवा, वहां बारिश ही नहीं रहती है, वो जैसे इबादत करता है, वो यक्ता परस्त रहता है। यक्ता परस्त एक भगवान को मानने वाला, वो समय रहता है इतिहास का जहां पे पॉलीथीज्म, कई लोगों की पूजा की जाती है, छोटे छोटे देवताओं की। वो लोग एक परमात्मा को कोई नहीं मानता, एक खुदा को कोई मानने वाला नहीं रहता है उस समय। तो वो करता है और वो आदमी ठीक हो जाता है, वो करता है और बारिश होने लगती है। फिर भी जो मालिक रहता है, जो खरीदता है, उसको यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। एक बार ऐसे दिखाया कि वो बीच में से जा रहे, उसकी माँ की कब्र रहती है, वो चला जाता है वहां से, क्योंकि वो तो गुलाम है बच्चा। तो वो उसको दूसरा एक आदमी रहता है, उसको मारने को रहता है, तो उसका हाथ ही रुक जाता है, ऐसे दिखाया है। और फिर बाद में वही बच्चा उसको बाद में ठीक कर देता है। फिर भी जो मालिक रहता है वो, उसको यकीन नहीं होता है कि ये सब ये बच्चे की वजह से हो रहा है, ये जो चमत्कार हो रहे हैं। फिर दिखाया एक सीन इतना अच्छा है उसमें कि वो बच्चे को खड़ा है, खड़ा करके, और सारे लोग जैसे बेच रहा है उस बच्चे को, अभी कोई है क्या खरीददार इसको बेचने वाला, और वो बच्चे को इतना ऐसा लगता है, और वो फरिश्ता उसको वापस दिखता है, जो कुएं में दिखा रहता है ना, वो उसको वापस दिखता है और कहता है कि आज ये लोग तुझे खरीदने के लिए खड़े है, एक समय आएगा तू इन सबको खरीदेगा। मतलब ये दिखाया है कि वो रूलर बन जाता है बाद में, तो उसको खरीदते है। तो ये देखो, वो जो आदमी है जिसने उसको बेचा था, वो घर जाता है और उसके साथी कहते हैं कि ये बच्चे ने क्या क्या कर दिया था आपने, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी इसको बेच के, ये कोई और है, ये कोई साधारण बालक नहीं है जिसको हमने बेच दिया। फिर उसको भी लगता है अरे नहीं, ये तो कुछ मैंने गलती कर दी, ये तो जो कुछ उसने किया है तो जैसे कोई नबी पैगंबर ही कर सकता है ऐसे चमत्कार, और कोई नहीं कर सकता ऐसे चमत्कार। वो वापस जाता है जिनके पास वो बेचता है ना पुतिफार, उसके पास वापस जाता है, मुझे बच्चा वापस चाहिए। पर वो कहता है अभी मैंने देने वाला तुमको बच्चा, तो बोलते बस मुझे एक मिनट उससे बात करने दो, वो छोटे बच्चे से मुझे ये पूछना है वो है कौन, वो बच्चा कौन है। क्योंकि वो कुएं में वो फरिश्ता उसको कहता है आज के बाद तुम्हें ना तो अपने माँ बाप का नाम किसी को बताना है, कुछ नहीं बताना है कुछ किसी के बारे में, तुम्हारा जन्म इस कुएं से हुआ है, फरजंदे कुआ ऐसे उसको नाम दे, फरजंद अर्थात बेटा, तुम कुएं के बेटे हो आज से। तो वो उस बच्चे को बोलता है मुझे दो मिनट बात करने दो बस उस बच्चे से। वो बच्चे को लेके जाता है वो जो उसको बेचता है, और कहता है कि तुम कौन हो मुझे बताओ, तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो बोलते मैं बता सकता हूँ, बस एक शर्त रखना, किसी को ये बताना होता। तो वो बताता है इब्राहिम का बेटा इसाक, इसाक का बेटा याकूब, और उसका मैं पैगंबर हूँ। वो बेटे को भी बचपन से पता रहता है कि वही पैगंबर होने वाला है। तो इसको इतना पश्चाताप होता है, बोलते मैंने ये क्या कर दिया। उसके चरणों में गिरता है, रोता है कि मैंने भगवान के पैगंबर को बेच दिया। वो जाके फिर झगड़ा करता है कि मुझे बेटा वापस चाहिए, वो गुलाम, वो जिनके पास बेचा रहता है वो वापस थोड़ी करेंगे उसको। फिर बोलते नहीं, हम नहीं करेंगे वापस, क्योंकि वो दिखने में इतना सुंदर रहता है। यहाँ तक मोहम्मद पैगंबर ने कहा है कि दुनिया की जितनी सुंदरता है 3/4 यूसुफ में है, इतना उसके बारे में स्टेटमेंट है वो। तो वो बेच देता है। फिर वो जो मालिक है वो कितने साल तक, 20 साल तक वहां ही रहता है। बोलते मैं जब तक ये लड़का इधर है मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। और 20 साल के बाद तब तक तो ये बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत सारी स्टोरीज है बीच में, परंतु वो जो यूसुफ है उसको माफ कर देता है, तभी माफ कर देता है। तो जिस आदमी ने उसको बेच दिया था उसको माफ कर दिया उसने, वो भी तुरंत। उसमें और एक चीज दिखाई है उसके जीवन में कि उसको कैद में डाल दिया जाता है। एक बार यूसुफ को 7 से 8 साल तक कैद में रहता है और झूठा मतलब ये रहता है, और वो जब निकलता है बाहर तो जिसने कैद में डाला उसको भी माफ कर देता है। कोई उसके प्रति मतलब एक भी निगेटिव संकल्प नहीं उसका, एक भी निगेटिव भावना नहीं, कुछ नहीं। वो तो यहां तक जिसने ये जो आदमी रहता है जिसने बेचा, वो जब 20 साल के बाद मिलता है तो कहता है कि अच्छा किया तुमने मुझे भेज दिया, क्योंकि बाद में वो सर बड़ा बन जाता है ना, जिनके पास रहता है ना उनके सबके हृदय जीतता है, वो जहां जहां जाता है सबको प्रभावित करता है, उसका स्वभाव ही ऐसा रहता है। बोलता है अच्छा किया तुमने, गुलामी से सरदारी मिल गई मुझे, उसको भी हल्का कर देता है, नहीं तो उसमें भी वो जो भाव है, हीन भावना है ना, उससे भी उसको मुक्त कर देता है। ऐसा नहीं कि नहीं तो, एक तो रियलाइज करना, तुम नहीं भूलना चाहिए कि मैंने माफ किया, ये नहीं है वहां। बोलते अच्छा किया तुमने मुझे बेच दिया, बहुत मतलब बहुत ही सुंदर, सबसे बेस्ट स्टोरी जो है ना ये यूसुफ की है। पूरे कुरान में एक ही ऐसा पैगंबर है जिसके लिए पूरा चैप्टर डिवोट किया गया है, बाकी किसी पैगंबर के लिए एक कंप्लीट चैप्टर, एक सूरा किसी को ही नहीं दिया गया है, एक यही है। क्योंकि उसके जीवन में ऐसी ऐसी बातें हैं कि वहां पर हम सोचते हैं कि अगर मैं उसके जगह होता ना तो ये कर ही नहीं सकता था, इन स्पाइट ऑफ विच जो हमारा ज्ञान है। सारा हमारे पास जितना ज्ञान है, शुभ भावना, शुभ कामना, माफ कर दो, श्रेष्ठ भावना है, पर वो तो उसके जीवन में ऐसा है जो कि नेचुरल दिखती है कि किसी के प्रति उसके ऊपर कितने उसको कोड़े मार रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं उसके साथ, परंतु किसी के प्रति उसकी एक निगेटिव भावना है ही नहीं किसी के प्रति। और ऐसा ही जाके धीरे 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 गुलाम से जाके राजा बन जाता है एक दिन पूरे मिस्र का। तो ये जो बात है शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव, ये बहुत ही सबसे बड़ा चिंतन का विषय है। हम कहते हैं हमारे पास श्रेष्ठ भावना है और शुभ भावना है, पर क्या वास्तव में है प्रैक्टिकल में? उन आत्माओं के प्रति जो तकलीफ देते हैं, जो सताते हैं, जो टांग अड़ाते हैं, विघ्न रूप बनते हैं, बेवक्त बेसमय जगाते हैं, उठाते हैं,
सूली पर चढ़ाते हैं,
तो वो तो बहुत ऊंची बात है, सूली पर चढ़ा दिया, गाली देना, हमारे सामने अच्छा बोलना, हमारे सामने अच्छा बोलना और पर पीछे निंदा करना, इवन क्राइस्ट ने सूली पर चढ़ाया पर क्या कहा कि ये अज्ञानी है, माफ कर दो इनको। पर क्या हम माफ कर पाते हैं जो लोग हमारे जीवन में आ रहे हैं, या आए थे या आते हैं रोज, गलतियां उनकी बहुत, हमको सूली पर तो कोई नहीं चढ़ा रहा है, पर वो थोड़ा 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 कुछ कुछ करते जो है बहुत मुश्किल है।
चैतन्य महाप्रभु को दिखाते हैं वो
गदाई और वो
उन्हें ये पीने वाला भांग पीने वाला आके उनको सिर पे ऐसा मारा, सिर से फट के खून बह रहे हैं, फिर भी जाके उसको
गले मिल रहे हैं। वो वैसे ही महाराष्ट्र में एक संत है गजानन महाराज, एक बार लोग आते हैं तीन चार लोग और वो जो गन्ने रहते हैं ना, गन्ने से उसको इतना मारते बाद में कहते आगे थक गए होंगे तो ये गन्ने का रस निकाल के मैं आपको देता हूँ, फिर वो रस निकालते उन सबको पिलाते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, मतलब ये शुभ भावना रखना जीवन में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, इसके ऊपर बड़ा चिंतन चाहिए। मुझे तो आश्चर्य लगता है ये पैगंबर श्रेष्ठ आत्मा है, ये संत, ये साधु, इनमें कैसी अद्भुत सी शुभ भावनाएं थी, ज्ञान नहीं थी उनके पास, ज्ञान नहीं था, परंतु उनके साथ बुरा करने वाले चाहे चैतन्य महाप्रभु हो चाहे कोई भी हो, इन्होंने उन सबको कैसे माफ कर दिया? माफ ही नहीं किया, ये तो बहुत छोटी बात है, उसके ऊपर भी उनको श्रेष्ठ समान में हमारी भाषा में स्थित कर दिया, उनको भी हल्का कर दिया। हाँ वो तो है, बीके आत्मा तो है, बट चलो अभी हमको क्या करना है, फिर हम कैसे इसको प्रैक्टिकल कैसे लाए? खाली इसको एक है तो पढ़ लिया और छोड़ दिया और याद कर लिया, सुना दिया, सुन लिया, ये एक स्टेप है, पर आगे क्या क्या हमारी हमारे पर ब्रह्मा बाबा का तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, कितना ग्लानी किया, ऐसी ऐसी ग्लानी है कि जो कहीं प्रिंट नहीं हुई है, कहीं छपी नहीं है, इतनी ग्लानी की। वो तो अब मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, शुभ भावना एक ऐसा टॉपिक है कि जो सब में था, ये कोई कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है ये। संसार में हर धर्म की आत्माओं में ये भाव थे, हर धर्म की आत्माएं, हो सकता है वो सब यहीं की आत्माएं हो, पर उस जमाने में, उस समय, उस परिस्थिति में जबकि लोग इतना विरोध कर रहे हैं उनका, उस समय ये भावनाएं रहना बहुत बड़ी। हमारे पास शुभ भावना बहुत अच्छी है, 9 बजे तक श्रेष्ठ भावनाएं है, निस्वार्थ भावना है, परंतु 9 बजने के बाद और 5 बजे तक उसका स्टॉक थोड़ा कहाँ चला जाता है पता नहीं, थोड़ा कम हो जाता है, फिर वापस 5 बजे सारा इमर्ज हो जाता है कि विश्व के प्रति शुभ भावना है, वासुदेव कुटुंबकम, सब हमारा परिवार है, पर वो जो बीच में कुछ हुआ उसका क्या वहां भी हम अपने आप को बताना पड़ता है, नहीं शुभ भावना है, शुभ भावना है, है, पर है कहाँ, स्टॉक कम होता है, इस स्टॉक को बढ़ाना है। वैसे एक दूसरी एक वो विदेश में अमेरिका में ब्रेनी, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, उसने सबसे ज्यादा गीत लिखे है, भजन जिसको कहते हैं हाइम्स क्रिश्चियंस के, वो जो है वो अंधी थी, परंतु उसके अंधेपन का कारण कोई एक डॉक्टर था कि बचपन में जब थी वो 5 या 6 साल की जैसी, तो उसने गलत दवाई आंख में डाल दी थी, उसके वजह से वो अंधी हो गई, पर आज तक उसके ही भजन गाए जाते हैं सारे चर्च में, जितने भजन उसने हजारों लिखे हैं 7-8 हजार, उतने आज तक किसी ने नहीं लिखे। उसका जो बर्थडे है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है पूरे अमेरिका में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका, फ्रेंड भी ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वो तो अभी 94 ईयर्स तक जिंदा थी वो, मतलब वो जैसे एक संत का पद उसको प्राप्त है, परंतु वो भी लिखती है कि अच्छा है वो डॉक्टर की वजह से मैं अंधी हुई, ऐसे लिखती है, नहीं तो ये जो ईश्वरीय सेवा में मैंने अपना सारा जीवन दे दिया वो नहीं दे पाती थी, जो मुझे प्रेरणाएं आई गीत लिखने की वो नहीं आती थी, उसके ऊपर मूवीज भी बनी हुई है इस तरह की, उसका पूरा जीवन उसमें बताया, जैसे वो ब्रेल है ना, वो लिपि उसकी जो वो है वैसे, हाँ हाँ लुई ब्रेंट, वो जो है वैसे ही इसका भी है, इसका तो उससे ज्यादा है, मतलब इतना उसने जो कुछ लिखा, पर वो लिखती है कि वो सबको पता था, सबकी बहुत बुरी दृष्टि थी कि भाई इसने गलत दवाई आंख में डाल दी और आंख चली गई, पर उसने कहा कि मैं, उसने लिखा है कि माफ तो क्या, उससे आगे की चीज लिखी है उसने, माफ तो कर ही दिया है पर अच्छा है उसकी वजह से, ये संसार में देखना भी क्या है, वैसे देख के भी क्या करती मैं, अगर मैं देखी तो शायद अंधी नहीं होती तो इतना बड़ा कार्य मैं नहीं कर पाती। उसके जो गीत है गाए जाते हैं सब जगह आज भी, आज तक इंग्लिश जो गीत है उसके, तो ये इसके ऊपर निरंतर चिंतन करते रहना है कि हमारी सभी के प्रति शुभ भावना है और श्रेष्ठ भावना है, चाहे हाँ दूसरा यूरोप, यूरोप में इंग्लैंड भी आ गया, यूरोप निवासियों के प्रति विशेष वरदान है ही, यूरोप के प्रति वरदान, सदा जीरो और हीरो भव, ऐसा वरदान शायद ही किसी ने दिया होगा आज तक गुरु गोसाई पैगंबर अवतार महात्मा, कौन सा वरदान, सदा जीरो और हीरो भव, कोई सोच ही नहीं सकता ऐसे भी वरदान होते हैं क्या, सोचो कोई योगी तपस्या कर रहा है हजारों साल और फिर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और कह रहे सदा जीरो और हीरो भाव, कैसा दृश्य लगता है ऐसे हीरो वरदान है बाबा के जीरो का तो पता है ना, 3 जीरो याद रखना, सिर्फ एक नहीं, जीरो और हीरो एक्टर है और हीरे समान है, डबल हीरो, तो 3 जीरो और डबल हीरो 5 हो गए, तो ये वरदान यूरोप निवासियों के प्रति है। अमेरिका, पूरा अमेरिका हाथ उठाओ, एक्सरसाइज करो और सीधा हाथ उठाओ, कईयों को आदत है छोटा हाथ उठाने की, बाप दादा को छोटा हाथ उठाने वाले, बाप दादा क्या कहते हैं उनको, पसंद नहीं, बड़ा भारी शब्द है इधर, बहुत छोटी बात बोल दी बाबा ने, बहुत ही कड़ी बात बोली है इसमें, बाबा को छोटा हाथ उठाने वाले, धारणा में गड़बड़, उससे भी बड़ी बात है रजा में तो
खंडित होती
और छोटा हाथ उठाने वालों के लिए हाफ कास्ट लगते हैं बाबा को हाफ कास्ट ब्राह्मण, पूरे ब्राह्मण नहीं, आधे अधूरे, ये याद रखना अभी अगली बार से फुल हाथ उठाओ, तो अमेरिका निवासी सर्व आत्माओं के प्रति विशेष ही वरदान है कि सदा माया से इनोसेंट और विजय में सेंट परसेंट और स्थिति में सदा सेंट, स्थिति में सेंट, विजय में सेंट परसेंट और माया से इनोसेंट। ये भी किसी को कैसे समझ में आएगा, कोई बाहर का पढ़े तो ये क्या है। हाँ तो ये बात है। कल मैं वही कह रहा था कि बाबा कहते हैं ना स्वर्ग के बारे में कोई और नहीं जानता, केवल तुम जानते हो। कल की मुरली में था ना, मैं यही कह रहा था कि क्या हम जानते हैं? हमारे पास सूचनाएं हैं एकत्र की हुई, पर क्या हम जानते हैं?
थोड़ा सूचना मिला है।
हाँ बस ये बात समझ लेना कि पूरा जानते हैं। सूचनाएं एकत्र की है हमने, अपनी बुद्धि के हिसाब से थोड़ी थोड़ी बुद्धि में रखी है। तो सदा इनोसेंट भी है और डबल सेंट भव, ये दूसरा वरदान, इनोसेंट और डबल सेंट भव। अफ्रीका मॉरिशस, आज बाप दादा साहब सीधा हाथ उठाने की ड्रिल करा रहे हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना ड्रिल करो। सर्व अफ्रीका निवासी बच्चों प्रति विशेष ही वरदान है कि सदा सर्व, अभी अफ्रीका को वरदान, सदा सर्व प्रॉपर्टी और सदा हर संकल्प बोल और कर्म में सहज ऑनेस्टी भव, प्रॉस्पेरिटी भव और त्रिस्वरूप से सहज ऑनेस्टी भव। एक एक वरदान। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया निवासी सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं प्रति विशेष यही वरदान है कि अभी ऑस्ट्रेलिया को वरदान, सदा माया से विजयी और साथ साथ माया जीत, विश्व के राज्य जीत श्रेष्ठ वरदान भव। साथ साथ और दूसरा वरदान, निश्चिंत और निश्चय निश्चित भव, निश्चिंत और निश्चय निश्चित भव। ऑस्ट्रेलिया निवासी विशेष बाप के प्रिय है तो सभी प्रिय, लेकिन विशेष ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रिय की हुए बाप की विशेष स्नेह की नजर ऑस्ट्रेलिया निवासियों के ऊपर रहती है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया निवासियों की धरनी कमाल करने में बहुत अच्छी है, लेकिन बाप विशेष धरनी को स्नेह का पानी देते हैं, इसलिए विशेष स्नेह है। समझा? तो ऑस्ट्रेलिया वाले कमाल बहुत कर सकते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी की है। और ऑस्ट्रेलिया का नाम भी अंत में लिया है तो अंत वालों को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, तो सभी को वरदान मिला। लास्ट ग्रुप है छोटा सा एक, मधुबन निवासी। मधुबन निवासी विशेष है, चाहे वर्तमान समय ज्ञान सरोवर निवासी, चाहे विश्व को सदा हेल्दी बनाने वाले हॉस्पिटल वाले, सिर्फ हेल्दी नहीं हैप्पी हेल्दी, चाहे मधुबन में चारों ओर घेराव डालने वाले बच्चे हैं, आबू में घेराव डाल रहे हैं ना, तो सर्व मधुबन निवासी विशेष बच्चों प्रति विशेष वरदान है कि अभी मधुबन को वरदान, सदा मनसा वाचा कर्मना तीनों में सेंट परसेंट प्रगति भव। बाकी जहां से भी सभी बच्चे आए हैं, भिन्न भिन्न विदेशों के देश से व भारत के देश से, सभी को विशेष सदा संपन्न और संपूर्ण भव। अहमदाबाद वाले भी सेवा बहुत अच्छा करते हैं, मधुबन में भी अथक सेवाधारी है, तो विशेष अहमदाबाद, दिल्ली और बॉम्बे, इन तीनों स्थानों को भी सेवा का बहुत अच्छा चांस मिला हुआ है। सभी स्थान अपने स्नेह संपन्न अर्थात अथक सेवाधारी बन सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, सेवा की मुबारक हो। और चारों ओर के जो दूर बैठे बहुत दिल में समीप है, तो चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस में भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुना स्वीकार हो, चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचे हैं, तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ भावनाओं की याद, शुभ भावनाओं की याद, शुभ संकल्पों की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष यादपार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। अच्छा एक और एक है लास्ट छोटा सा, दादियों से मुलाकात। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं, अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा है और इशारों की भाषा है, तो आप भी जानते हो ना, नैनों की भाषा जानते हो, साकार से सीखे हो ना, मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हुजूर तो करते ही है। अच्छा लास्ट में बाप दादा के ने हाथ उठाकर सभी को आशीर्वाद दिया और विदाई ली। तो इस मुरली में बाबा ने तीन वरदान दिए, पहले तो मुख्य, पहला संपत्तिवान संबंध और तीसरा सेहत के लिए। सेहत भी किसकी? आत्मा की। फिर सदा शुभ भावना शुभ भाव, फिर डबल जीरो और हीरो भव, और उसके बाद में फिर यहाँ पे सदा माया से इनोसेंट, विजय में सेंट परसेंट और स्थिति में सदा सेंट, और फिर सदा सर्व प्रॉपर्टी और सदा हर संकल्प बोल और कर्म में सहज ऑनेस्टी भाव, प्रॉस्पेरिटी भाव और त्रिस्वरूप में सहज ऑनेस्टी भाव, ये सारे सदा निश्चिंत और निश्चय निश्चय भव, और लास्ट में मधुबन निवासियों को सदा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सेंट परसेंट प्रगति भव। ऐसे ये तीन वरदान दिए। तो कल अव्यक्त आज थर्सडे है ना, गुरुवार है कल, ठीक है। फिर पंजाब का ग्रुप और लास्ट दिन लंदन अमेरिका और किसको कहा है, गयाना और जर्मनी, अमेरिका लंदन, इधर छोटे छोटे है वो। हाँ पंजाब का पूरा, इधर का भी और इधर